शिवानी के एक्सीडेंट की न्यूज़ मिलते ही आहन तुरंत हरकत में आ गया। उसने उसी वक्त अपने किसी खास आदमी को कॉल करके दामिनी को किडनैप करने का कहा। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाने लगा। आहन हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधे शिवानी के वार्ड की तरफ गया। वहां पर उसका बॉडीगार्ड पहले से ही वेट कर रहा था। आहन को देखते ही वो तेज कदमों से चलकर उसके पास गया। आहन ने उसके आते ही सीधे सबसे पहले यही पूछा, मिस्टर वर्मा, मेरी मॉम कैसी हैं? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मिस्टर वर्मा ने नजरें झुकाकर जवाब में कहा, अभी कुछ कह नहीं सकते सर, वैसे तो उनके सिर के अलावा और कहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरीज का पता नहीं चलता, डॉक्टर ही इसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मिस्टर वर्मा की बात सुनकर गुस्से में आहन की मुट्ठियां कस गईं। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, कुछ पता चला वो गाड़ी किसकी थी जिसने मॉम को टक्कर मारी थी? मुझे वो आदमी मेरे पास चाहिए। मैंने उस गाड़ी का नंबर पहले ही हमारे आदमियों को भेज दिए हैं, वो जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मिस्टर वर्मा ने जवाब दिया। आहन और मिस्टर वर्मा वहां खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर शिवानी के कमरे से बाहर निकल कर आए। उन्हें देखकर आहन तेज कदमों से उनके पास चला गया और डॉक्टर से कहा, मेरी मॉम अब कैसी हैं? वो ठीक है ना डॉक्टर? अच्छा, तो आप पेशेंट के बेटे हैं? आई एम सो सॉरी मिस्टर, लेकिन आपकी मॉम की हालत ठीक नहीं है, उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना होगा, उनकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो उनकी जान जाने का खतरा रहेगा, मैं एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा देता हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। उन्होंने शिवानी की अपडेट दे दी थी जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे। आहन को शिवानी की फ़िक्र भी हो रही थी, साथ ही उसे दामिनी और विजय पर गुस्सा भी आ रहा था। इस वक्त आहन को ठंडे दिमाग से काम लेना था। उसने डॉक्टर की बात पर हामी भरी और शिवानी को लेकर तुरंत शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा। वहां जाने से पहले आहन ने बेस्ट मेडिकल टीम का अरेंजमेंट करवा लिया था। आफ्टरऑल आहन ओबेरॉय, जो कि एशिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन में आता था, उसके लिए ये सब काम मुश्किल नहीं था। लगभग एक घंटे में वो लोग मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजीवनी में पहुंच चुके थे, जहां शिवानी का इलाज चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आहन और तनु खड़े थे। तनु, अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो आई स्वेयर मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, आहन ने तनु की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तनु ने आहन के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे से सहलाते हुए कहा, चलो हम दुआ करते हैं कि आंटी को कुछ ना हो, मेरा दिल कहता है उन्हें कुछ नहीं होगा, सो यू डोंट वरी। बोलते हुए तनु ने आहन का हाथ पकड़ा और उसे हॉस्पिटल में बने मंदिर के सामने लेकर आ गई। भगवान की मूर्ति देखते ही आहन ने अपनी नज़रें घुमा ली थीं। तनु जानती थी आहन भगवान में यकीन नहीं रखता और उसके पास उसकी वजह भी थी। उसने आहन को फोर्स नहीं किया और खुद ही प्रार्थना करने लगी। अब उन्हें डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने का इंतजार था, जो कि पिछले 3 घंटे से शिवानी की सर्जरी कर रहे थे। दूसरी तरफ निशा के सारे टेस्ट हो चुके थे और उसकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थीं। पार्वती जी निशा के पास थीं, जबकि श्रद्धा और चाहत अंदर डॉक्टर के केबिन में बैठी थीं। डॉक्टर ने उन्हें अभी अभी अंदर बुलाया था। चाहत की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं, मानो अभी उसका दिल फटकर बाहर आ जाएगा। चाहत ने हिम्मत करके डॉक्टर से धीरे से पूछा, मम्मा कैसी हैं? उन्हें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, खाना भी ठीक से नहीं खाती तो चक्कर आ जाते हैं, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने चाहत की तरफ देखा, फिर उन्होंने एक नज़र श्रद्धा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो समझ गए थे चाहत को अभी भी अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। डॉक्टर ने चाहत की तरफ देखकर कहा, मिस शर्मा, लगता है आपको अपनी मॉम की हेल्थ के बारे में ठीक से पता नहीं है, वो पिछले 6 महीने से इतनी सीवियर बीमारी से गुजर रही हैं और आपने ठीक से चेकअप भी नहीं करवाया, उन्हें कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं बल्कि लंग कैंसर हुआ है, उन्हें जो ट्रीटमेंट दी जा रही थी वो उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट कर रही थी और इस वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे ही डॉक्टर ने निशा को कैंसर होने की बात कही, चाहत को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो, वो वहीं पर जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगी। काम डाउन मिस शर्मा, वो अपनी बीमारी के सेकंड स्टेज में है और हम अभी भी इलाज करके उन्हें बचा सकते हैं, डॉक्टर ने चाहत को तसल्ली देते हुए कहा। चाहत का रोना फिर भी रुक नहीं रहा था, इसलिए श्रद्धा ने उसकी पीठ सहलाई और कहा, चाहत तुमने डॉक्टर की बात सुनी नहीं, वो कह रहे हैं आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम आज ही उन्हें ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं और तुरंत उनका ट्रीटमेंट भी शुरुआत कर रहे हैं, पूरे इलाज पर लगभग 80 से 90 लाख रुपए का खर्च आएगा, सारे टेस्ट के बाद हम उनकी पहली कीमोथेरेपी सेशन शुरू करेंगे, तो आप उसकी फीस काउंटर पर जमा करवा दीजिएगा। डोंट वरी मिस शर्मा, हमारे थान फौरन से डॉक्टर्स की टीम आती है, नर्स आपको दवाइयों और ट्रीटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी, वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने चाहत को सब समझा दिया। उन्होंने ये सिर्फ कीमोथेरेपी की फीस बताई थी, इसके अलावा हॉस्पिटल का खर्च, दवाइयों का खर्च और बाकी चीजों का मिलाकर उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लगभग 1 करोड़ के करीब होना तय था। श्रद्धा जल्दबाजी में निशा को हॉस्पिटल ले तो आई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वो जिस हॉस्पिटल में लेकर आ रही थी वो मुंबई के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से एक है। डॉक्टर से बात करने के बाद श्रद्धा और चाहत बाहर आ गई थी। दोनों के ही चेहरे उतरे हुए थे। श्रद्धा ने चाहत की हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, डोंट वरी चाहत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अभी कहा ना कि हम आंटी को बचा सकते हैं, देखना आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लीज मुझे तो झूठी तसल्ली मत दे, तो अच्छे से जानती है कि मेरा तो मंथली खर्चा भी मैं ठीक से नहीं निकाल पाती, तो इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। रवि अंकल को घर का किराया ना देना पड़े इसलिए मम्मा उनका काम करवाती हैं। मैं छोटी मोटी नौकरी करके मुश्किल से 20,000 भी नहीं कमा पाती और तुम यहाँ 1 करोड़ की बात कर रही हो। बोलते हुए चाहत जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए आगे बोली, मैं मम्मा को खोना नहीं चाहती हूँ। श्रद्धा प्लीज कुछ करो, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरा उनके अलावा कोई नहीं है। मैं डैड से बात करके देखती हूँ, पूरे इलाज का पता नहीं लेकिन इस सेशन का हम देख लेंगे। हो सकता है आंटी 1 सेशन के बाद ही ठीक हो जाएं। बहुत से पेशेंट स्टार्टिंग स्टेज में जल्दी ठीक हो जाते हैं। श्रद्धा ने चाहत के कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर उसे दूसरी तरफ लेकर गई। उसने चाहत को बेंच पर बिठाया और उसके लिए पानी लेने चली गई। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी मम्मा की जान बचानी है, चाहत ने अपने मन में कहा। वो काफी सोच विचार में लगी थी कि कौन था जो उसकी मदद कर सकता था। चाहत पिछले 3 साल से काम कर रही थी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया था जिनके माँ बाप बहुत अमीर होते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना दयालु या दरिया दिल नहीं था जो चाहत की मदद कर सकता था। चाहत के दिमाग में उन सबके चेहरे घूम रहे थे और इसी बीच उसके दिमाग में आहान का ख्याल आया। आहान ओबरॉय, उसने मुझे कहा था वो मेरी मदद करेगा, वो मुझे जॉब देगा, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी, वो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करवा भी सकता है, वो तो बहुत अमीर है, चाहत ने खुद से कहा। आहान के रूप में उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। चाहत ने आहान से मिलने का फैसला लिया। तब तक श्रद्धा भी उसके लिए पानी लेकर आ चुकी थी।
चाहत ने जल्दबाजी में कहा, तुम मॉम का ख्याल रखना, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, अगर नहीं आ पाई तो कॉल करके बता दूंगी। चाहत ने श्रद्धा के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और आहान से मिलने के लिए चली गई। रात के लगभग 1 बज रहे थे। शिवानी को जब ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था तब रात के लगभग 8 बजे थे और अब तक उसकी सर्जरी चल रही थी। तनु और आहान बाहर बैठे ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लाइट बंद हुई दोनों खड़े हो गए। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर आए। डॉक्टर ने आहान के पास आकर कहा, हेड इंजरी हुई है, हमने सर्जरी कर दी है, शी इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, टेम्पररी कोमा स्टेट कह सकते हैं, लेकिन कोमा जितना टाइम भी नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर होश आ जाएगा। इस बीच डॉक्टर उन्हें पूरी तरह अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। शिवानी की हेल्थ अपडेट देने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। भले ही शिवानी की जान बच गई हो लेकिन इस वक्त वो एक जिंदा लाश से बढ़कर कुछ नहीं थी। शिवानी ठीक थी इसलिए आहान को विजय ओबरॉय के खिलाफ कुछ करने का मौका मिल गया। उसने तुरंत शिवानी के वार्ड के बाहर टाइट सिक्योरिटी लगा दी। अब शिवानी से मिलने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ आहान को थी। सिक्योरिटी सेटल करने के बाद आहान ने तनु से कहा, तुम मेरी मॉम के पास रहोगी, मैं अपना काम करके आता हूँ। आहान की आंखें देखकर ही तनु समझ गई थी कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और जरूर सबसे पहले विजय ओबरॉय के पास ही जाएगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सबसे पहले हम तुम्हारे घर चल रहे हैं, तुम्हें वहां जितनी तोड़फोड़ करनी है तुम कर सकते हो, तुम्हें इसकी इजाजत है और बिल मैं पे करूंगी, तनु ने सख्त आवाज में जवाब दिया और आहान का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। वो भी अच्छे से जानती थी कि इस वक्त आहान का गुस्सा शांत करने की जरूरत है। बाकी रही बात विजय ओबरॉय से निपटने की, तो आहान कभी भी उससे निपट सकता था।